नमस्कार, गुड इवनिंग। शुभ संध्या घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ राकेश राव। राकेश जी, आपका स्वागत है।
बहुत बहुत शुक्रिया।
तो भारत के नजरिए से खेल जगत में आज काफी हलचल है। क्रिकेट का सबसे बड़ा, अगर हम आईपीएल मुकाबला कहें, राइवलरी मैच कहें, या फिर अगर हम बैडमिंटन की बात करें, तो भारत के लिए बड़ा अवसर है। तो बात करेंगे सब पर, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। बीसीसीआई ने T20 महिला विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में आज भारत का सामना फ्रांस से होगा। और भारत के उभरते टेनिस खिलाड़ी मानस धामनी ने पहली बार एटीपी चैलेंजर फाइनल में जगह बनाई। तो आज की अगर हम सबसे बड़ी खबर की बात करें, सबसे पहले चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट की बात करते हैं, जो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने ताजा समाचार मिलने तक अभी 12वें ओवर में 3 विकेट पर 101 रन बना लिए हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कल के मैच का जरा हाल जान लेते हैं, जहां जयपुर में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया और आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स ने 226 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया।
टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत खराब रही। राजस्थान ने दूसरे ही ओवर में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद कप्तान रियान पराग और ध्रुव जुरेल ने दूसरे विकेट के लिए 59 गेंदों में 102 रन की साझेदारी की। जुरेल 30 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए, वहीं पराग ने 50 गेंदों में 90 रन की कप्तानी पारी खेली। डोनोवन फरेरा ने 14 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाए और टीम को 225 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचाया। दिल्ली की ओर से मिचेल स्टार्क ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम को पथुम निशंका और केएल राहुल ने शानदार शुरुआत दिलाई। निशंका ने 33 गेंदों में 62, वहीं राहुल ने 40 गेंदों में 75 रन का योगदान दिया। अंतिम ओवरों में आशुतोष शर्मा ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर टीम को जीत दिलाई। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
तो जिस तरह का प्रदर्शन अभी कर रही है मुंबई इंडियंस, अब तक के मैच को लेकर आप क्या कहेंगे?
मुंबई इंडियंस के लिए देखिए, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि वो अभी बाहर हो गए, लेकिन बिल्कुल उस एज पे पहुंच गए हैं कि अब इससे ज़्यादा वो रिस्क ले ही नहीं सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब आप 14 मैचेस लीग के हैं, आपको कम से कम 8 मैच जीतने होते हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि कम से कम आप कंटेंशन में रहेंगे। 7 मैचेस में आप क्वालिफाई नहीं करते 7 जीतने के बाद, क्योंकि एक पंजाब है जो ऑलरेडी उनका एक मैच नो रिजल्ट के कारण वो एक पॉइंट आगे ही रहते हैं लोगों से, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है अभी तक, तो वो भी एक फैक्टर है। तो मुंबई इंडियंस के लिए देखिए, एक बात तो यह है कि उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, दूसरा उनका रेपुटेशन जो है वही उनके ऊपर अब इतना ज्यादा जो इतना हैवी हो गया है उनके लिए। और सीएसके का भी वही हाल है, वो कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन रेपुटेशन अभी है, फॉर्म नहीं है। खासकर हम सूर्य कुमार यादव की बात हर मैच में करते हैं, उनका फॉर्म बहुत खराब रहा है, न स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेल पा रहे हैं, न पेस के अगेंस्ट खेल पा रहे हैं, रन्स नहीं है उनके बोर्ड पे। और अभी भी आज लग रहा था कि शायद एक लंबी पारी जो है देखने का मौका मिलेगा, वो भी नहीं मिला। तो उनकी प्रॉब्लम्स कम नहीं हो पा रही हैं। तो सीएसके को ये एक अवसर है कि वो मुंबई इंडियंस जो कि उनके आर्च राइवल्स हैं, तो उनके ऊपर एक और जीत हासिल करके अपनी स्थिति थोड़ी और इम्प्रूव करें।
बिल्कुल, दोनों ही टीम अच्छी स्थिति में नहीं है और दोनों के पास अभी अवसर है कि एक दूसरे को गिराकर थोड़ा ऊपर पहुंच सकते हैं। मुंबई अंक तालिका में 9वें स्थान पर है और चेन्नई 7वें स्थान पर है। कल के मैच की बात करें, जैसा कि हमने अभी रिपोर्ट में सुना, किस तरह से 226 रन चेज किया है दिल्ली कैपिटल्स ने अपने इतिहास में।
देखिए, कल का जो चेज था वो एक स्टेज पे लग रहा था कि शायद ये टीम जो है 9 विकेट से जीत जाएगी, क्योंकि उनका जो ओपनिंग स्टैंड था वो बड़ा अच्छा रहा, अच्छे अंदाज से केएल राहुल जो हैं वो चेज में, जब आप उनकी इनिंग्स देखते हैं उनमें कभी आपको ये नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा शॉट्स मार रहे हैं। उनकी शॉट मेकिंग काफ़ी सिलेक्टिव है और वो जब तक क्रीज पे रहते हैं ऑपोजिशन को ये चैन नहीं पड़ता कि मतलब ये मैच हम निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि राहुल का अप्रोच सबसे अलग है। सूर्यवंशी जैसे नहीं है कि वो मौका देते हैं, वो मौका बहुत कम देते हैं
जी।
और अगर उनके बैट से 50 निकलता है 60 निकलता है तो टीम भी अश्योर हो जाती है कि ठीक है हमें एक अच्छा स्टार्ट मिल गया। तो कल हालांकि 7 विकेट से जीती टीम, वो भी बहुत कंफर्टेबली जीती है, उससे भी आराम से जीत सकती थी। तो सोचिए कि अगर 226 का आपका लक्ष्य है वो आप इतने आराम से जीत रहे हैं कि आप 9 विकेट से भी जीत सकते थे एक स्टेज पे, 7 विकेट से आपने इवेंचुअली वो मैच बड़े आराम से आपने जो है खत्म किया। लेकिन मुझे अचरज इस बात की है, मतलब जो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि डीसी का अटैक बहुत अच्छा है, लेकिन उनके अटैक पे जितने रन बन रहे हैं, अटैक के जो उनकी जो यू नो लाइक क्वालिटी जो है वो देख के सब लोग ऐसे सोच रहे हैं कि इतने अच्छे अटैक को इतने ज्यादा रन कैसे कंसीड कर सकती है। बैटिंग अच्छी है, काफी डीप बैटिंग है उनकी डीसी की, और उस हिसाब से उनको टॉप फोर में बहुत पहले से होना था और वहीं रहना था, लेकिन ऐसा खेल नहीं रही है टीम।
हम कह सकते हैं कि उनकी कंसिस्टेंसी उतनी अच्छी नहीं रही, कुछ खिलाड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं लेकिन वो अस्थिरता बनी रही।
नहीं, उन्होंने कुछ मैच बिल्कुल जीतते जीतते हारे हैं वो मैच। जैसे मुझे याद है डेविड मिलर का एक वो था, चेस था
जी,
उनको 2 रन पे वो जीत जाते, वो मैच मतलब जीत रहे थे वो, उन्होंने सिंगल्स नहीं लिया, एक मैच पे सिंगल नहीं लिया, दूसरे लास्ट बॉल पे जो था भागे आउट हो गए। तो द पॉइंट इज कि उनकी प्लानिंग में भी कहीं ना कहीं उनको ऐसे झटके लगे हैं, लेकिन उन्होंने जैसे पंजाब किंग्स के साथ वो खेले 264 बनाया, अच्छा टोटल, अगले मैच में 48 घंटे बाद उनसे 100 रन भी नहीं बने। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी की बात आप कर रहे हैं ये बहुत अचरज की बात है, क्योंकि टीम में वो सब कुछ है जो एक T20 टीम की एक अच्छी कॉम्पोजिशन में होना चाहिए।
जी बिल्कुल, और इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स 8 अंकों के साथ अंक तालिका में 6 स्थान पर है, और जबकि राजस्थान रॉयल्स 12 अंकों के साथ 4 स्थान पर है। हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने BCCI ने आज T20 महिला विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जहां हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तानी करेंगे और जबकि स्मृति मंधाना को उप कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है। तो किस खिलाड़ी की वापसी हुई है और किसे बाहर बैठना होगा, जानने के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
15 सदस्यीय भारतीय टीम एक मजबूत बैटिंग लाइनअप के साथ वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, जिसमें शिफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, भारती फुलमाली और ऋचा घोष शामिल हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया और बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिनर राधा यादव टीम में वापस आ गई हैं। अभी तक एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेलने वाली खिलाड़ी नंदिनी शर्मा को भी टीम में जगह मिली है। प्रतिका रावल को टीम से बाहर कर दिया गया है, जबकि ऑलराउंडर अमनजोत कौर चोट के कारण टीम में जगह नहीं बना पाई। हरमनप्रीत कौर सभी मैचों की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। टीम में दीप्ति शर्मा, श्रीचरणी, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़ और श्रियंका पाटिल भी शामिल हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स की मेजबानी में 2026 T20 वर्ल्ड कप 12 जून से शुरू होगा और फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। भारत को ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया के साथ रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स भी इसी ग्रुप में हैं। वुमेन इन ब्लू 14 जून को एजबेस्टन में पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कास्ट।
तो जिस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं टीम में, कई लोगों की वापसी हुई है, यानी कुछ लोगों की वापसी हुई है, और प्रतिका रावल को टीम से बाहर किया गया है, वहीं चोट के कारण अमनजोत कौर भी बाहर रहेंगी खेल से। तो इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से T20 वर्ल्ड कप में इंडियन वुमेन टीम कुछ अच्छा नहीं कर पाई, अब अभी टीम को आप देखकर क्या कहते हैं?
देखिए, टीम हमारी जो है व्हाइट बॉल क्रिकेट की टीम हमारी अच्छी रही है, और मैं इस टीम को हमेशा ये मानता हूँ कि हम टॉप फोर की टीम है, चाहे हम अच्छा खेल रहे हों या अच्छा ना भी खेल रहे हों, क्योंकि वुमेन ये जो है वुमेन्स क्रिकेट में ओवरऑल स्टैंडर्ड बहुत एवरेज है। 5 टीमें हटा दीजिए तो बाकी 5 टीमें बहुत वीक है। तो हमारा अगर हम टॉप 4 में हैं तो वो कोई बहुत बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। हमको उससे भी बेटर होना चाहिए, हमें टॉप 3 में रहना चाहिए। 4 से तो 5 पे भी आ सकते हैं हम, लेकिन कम से कम ये रहेगा कि सेमीफाइनल। जैसे आपने कहा कि ये टीम जो है हमारी, हमने इस बार भी देखिए एक न्यू फास्ट बॉलर लिया है, नंदिनी जो है वापस आए, मतलब पहली बार उनको नेशनल टीम में जो है ना मौका मिला है। फास्ट बॉलर है, 24 वर्षीय, वो एक उनको मतलब उनका जो है अगर मुझे याद है विमेंस लीग में उन्होंने 17 विकेट लिए थे और काफी स्ट्रांग लगी थी वो। तो चेस मतलब इसमें मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो सिलेक्टर्स आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं।
बिल्कुल,
ये पहले नहीं होता था, पहले विमेंस क्रिकेट में ये हम नहीं देखते थे। ये मैं कहूं कि पिछले 3 साल में देखा गया कि सिलेक्शन मैटर्स को लेके हम बहुत फेयर हो गए, इससे रिजल्ट भी दिख रहा है हमको। रिजल्ट काफी अच्छा दिख रहा है और बाकी जो कोर है टीम का वो तो सेम है हमारा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये टीम जो है फाइनल खेलेगी
जी।
क्योंकि इसमें वो क्षमता है। अब लंदन में कैसे खेल पाती है, क्या कर पाती है, वो अपनी जगह है, क्योंकि वहां पे सिर्फ टीम की स्ट्रेंथ नहीं, कंडीशंस जो हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि भाई क्या ये लड़कियां अपने आप को उस वक्त, अब बिकॉज सेकेंड हाफ है इसका, यू नो लगे समर का, उस टाइम पे वो कैसे मैनेज कर पाती हैं, वेदर कंडीशंस क्या रहती हैं और सीमिंग कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने कि हम लगातार अब जो नए बदलाव हो रहे हैं तो नए नए खिलाड़ियों को भी जगह दी जा रही है। आपने नंदिनी शर्मा का जिक्र किया जिसने अभी तक किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में नहीं खेली है वो, तो उम्मीद है कि आगे भी हमें अच्छे इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जैसे अभी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं बैडमिंटन की, थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट की जो डेनमार्क में चल रहा है और आज सेमीफाइनल में भारत का सामना फ्रांस से होगा। लेकिन इस सेमीफाइनल से पहले एक बहुत बड़ा झटका लग गया है कि लक्ष्य सेन चोट के कारण बाहर हो गए हैं और इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर हम पूरी की पूरी पूरा क्रम दारोमदार देखें तो कहीं ना कहीं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पर आ गया है और इसके अलावा आयुष शेट्टी है हमारे पास, तो कितना कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी आज भारत के लिए।
मुश्किल हो जाएगा ये, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि फ्रांस के साथ हमारे जो है सिंगल्स, एक सिंगल्स तो हमको उम्मीद थी कि लक्ष्य से मिलेगा
जी।
और लक्ष्य अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा खासा फॉर्म है उनका, और उनमें यही रहा है कि इंजुरी ने उनके पूरे करियर को चौपट किया हुआ है। अगर हम उनके करियर का एक ग्राफ देखेंगे, जब जब लगता है कि वो अच्छा खेल रहे हैं कोई ना कोई इंजुरी से वो थोड़ा सा ना पीछे रह जाते हैं। उनको एक मैं ये मानता हूं अगर उनको 3 साल इंजरी फ्री मिल जाएं तो उनके रिजल्ट्स भी कमाल के होंगे, लेकिन अब ये हो गया है क्योंकि कल उन्होंने, हमने देखा कि कितनी डाइमें मारी हैं उन्होंने।
बिल्कुल,
जहां मौका मिला है हर शटल के ऊपर उन्होंने अपनी जान बिल्कुल लगा
दी। इसी डाइव के कारण उन्हें कोहनी पर चोट लग गई
तो ये है, तो ठीक है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में ये सब उसका एक हिस्सा है, लेकिन हाँ हमारे चांसेस जरूर थोड़े से कम हो जाएंगे इसमें।
हाँ, और लक्ष्य सेन की अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट पर उतरेंगे। अपने श्रोताओं को बता दें हम और क्वार्टर फाइनल में कल भारत ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर हालांकि एक पदक तो पक्का कर ही लिया है, लेकिन फ्रांस ने जापान को हराकर पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है, तो उसमें भी उतना ही कॉन्फिडेंस होगा। तो देखते हैं आज का मैच कितना रोमांचक होता है। हमने बैडमिंटन की बात की तो हम टेनिस की भी बात करेंगे, क्योंकि भारत के उभरते टेनिस खिलाड़ी मानस धामनी ने कजाकिस्तान के शिमकेंट में फ्रांस के एंटोनी गिबाउडो को सीधे सेटों में हराकर पहली बार एटीपी चैलेंजर्स फाइनल में पहुंचकर बड़ी सफलता हासिल की है। 8 साल के इस भारतीय खिलाड़ी ने क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में संयमित और आक्रामक खेल दिखाया है और उन्होंने फ्रांस के खिलाड़ी को 6-4, 6-3 से हराया। फाइनल में कल धामनी का सामना बेल्जियम के बुआयसर गदामौरी से होगा।
देखिए, बहुत हम लोगों को सिंगल्स वाले जो वर्ल्ड है वहां से हमको अच्छी खबर मिलती नहीं है, तो जैसी भी खबर है कि एक यंगस्टर अच्छा करता है तो हम सब एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें मेन सिंगल्स में जमाना हो गया है कि हमें अच्छी खबर मिले। ठीक है, जितने भी हमारे यूकी भामरी और ये सारे जितने लोग खेलते रहे सालों साल खेले, लेकिन अपना एक जो प्रॉमिस दिखाने के बाद कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचे, और ये देखा गया है कि हमारे जितने सिंगल्स के खिलाड़ी होते हैं बहुत जल्दी अपने अपने लाइफ में उनको ये पता लग जाता है कि बहुत आगे का रास्ता उनसे तय नहीं होगा, इसलिए वो डबल्स खेलना शुरू कर देते हैं। सुमित नंगल के साथ भी हमने यही देखा था और आज भी अभी बस उम्मीद है कि यहाँ कुछ और देखने को मिले।
चीन के सूझों से अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि AFC अंडर 17 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट में अपने पहले ग्रुप मैच में भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और वहीं कजाकिस्तान के अल्माटी में कल से ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अनंतजीत सिंह, रायजा और मरोज अहमद। और श्रोताओं, अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, समय है आपसे विदा लेने का, तो कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। राकेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी के साथ अनुमति दीजिए, नमस्कार।